Thank you. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशये नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं न मां चरणन्ति ते। अङ्गश्यामलिं चटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जटञ्जाकुटरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं
श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद प्रथम अध्याय। गत परश्व एकता प्रसंगे मैंने कहा था कि कृष्ण ने विचार किया ब्रजलीला में सब असुरों को ध्वंस किया, मथुरा लीला में कंस चारुण मुष्टिक इत्यादि असुरों का संहार किया, द्वारका में पहले काजवन इत्यादि का, फिर वहां पर औष्णिक वासुदेव काशी नरेश इत्यादि सबको खत्म किया। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के तरफ में देख करके दोनों पक्ष के मिला करके केवल 10 आदमी बाची रहे, बाकी सबको समाप्त कर दिया। इस प्रकार उपहरण हुआ, किंतु कृष्ण ने सोचा कि अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? असल में तो बाकी है ब्रह्मा इत्यादि के निवेदन से, अपने परिकरों में जो स्वर्ग से आए थे उनको स्वर्ग में, और जो बैकुंठ से आए थे बैकुंठ में, और कुछ को गोलोक धाम द्वारका इत्यादि में, सबके अलक्षित रूप में ले जाना था। किंतु कृष्ण ने यहां पर अपनी जोग माया के द्वारा ये सब घटना ही की। कृष्ण सब समर्थ हैं, वो चाहते तो ऋषियों के शापिशंपात से मूसल से ही वंश का ध्वंस होगा, इसको टाल सकने में समर्थ थे, जो नहीं हो सकता उसको भी करने में ये समर्थ है। किंतु उनकी इच्छा ही थी ऐसा, इसलिए बाहर से ऐसा दिखलाया। ऋषियों का साथ कृष्ण सबको देखने लगे, ये द्वारका में बड़ा उत्पात हो रहा है, इसलिए कौंडाश्रम ले गए वहां
प्रभास तीर्थ में
वहां पर ले गए। यहां पर बहुत उपद्रव हो रहा है, वहां पर यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे और इस तरह से इस विपत्ति से छुटकारा पाएंगे। सबको ले गए, वहां पर यज्ञ इत्यादि किया, ब्राह्मणों को भूरी भूरी दान दिया। सब करने के बाद में यादव लोगों ने मेरे
रस
मद्य का पान किया और पीते ही अपना पराया सब कुछ भूल गए और जो जो जिसको देख पड़ा वो उसी से लड़ पड़ा। प्रद्युम्न अनुरुद्ध सात्विकी, कृष्ण के जितने भी लड़के थे नाती थे सब लड़ने लगे। बलदेव और कृष्ण ने उनको मना किया, ऐसा मत करो, तो भी वो नहीं माने। कृष्ण के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण मुस्कुराने लगे। बलदेव जी ने देखा कि हमारे सामने होगा ऐसा, इसलिए वे एक श्वेत महासर्प का रूप धारण कर लिया, उस शरीर को छोड़ दिया। सब लोगों ने देखा कि सहस्त्र फण वाला एक नाग वहां से निकल करके जा रहा है। कृष्ण देखा जी बलदेव प्रभु भी चले गए। कृष्ण वहां से हट करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। न शोक न होश, शोक न हर्ष न आनंद न दुख, कुछ नहीं, ऋषियों जैसे बैठ गए। इतने में उद्धव जी उनको खोजते हुए वहां आए, देखा जी प्रभु ऐसा मालूम होता है कि आप इस जगत से लीला संवरण करने वाले हैं, कृपा करके मुझको भी अपने साथ में ले चलिए। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी जरूरत है, धर्म लुप्त हो जाएगा, ये जो हमने प्रकाशित किया है हमारी लीला कथाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तुम रहो और ये सब ज्ञान विदुर से कहना जो हम तुमको दे रहे हैं, और इसके बाद में वहां से बद्रिकाश्रम में रहना और वृंदावन को भी नहीं छोड़ना, और उनको उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत में 6 से लेकर के 29 तक उनको ये सब ज्ञान दिया। गीता ने जो ज्ञान दिया उससे भी कुछ अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण वो सब दिया जो उद्धव संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद ही में उद्धव को बद्रिकाश्रम विदा करके विदा किया, त्यों ही दारुक वहां पर आया और दारुक आकर के कृष्ण को प्रणाम किया। उसके उतरते ही दारुक के वरथ और घोड़े सब नहीं चले गए। दारका जी ये क्या आश्चर्य चकित हो गया, प्रभु मुझको भी साथ ले चले। इसके बाद उसको विदा किया कि जाओ तुम द्वारका, द्वारका से सब लोगों को वहां से हटा करके दूसरी जगह लेना, 7 दिन के अंदर में समुद्र द्वारका को डुबो देगा, कोई चिन्ह नहीं रहेगा। ऐसा कहकर उसको विदा किया और फिर वही बटतला में बैठे थे। कुछ ऊंचा बटतला था उसके ऊपर बैठे और एक पैर के ऊपर में दूसरा पैर रख दिए। कुछ ध्यानस्थ हो रहे थे, इतने में पढ़ लिया बाण पर वही नौकुला लगा करके देखा जे हिरण है, जीव हिरण की, बस वहीं से बाण मार दौड़ा। जे चलेंगे मृग को पकड़ लेंगे, वहां जाके मृग नहीं तो कृष्ण है, कृष्ण में चरणों में हमें दंड दीजिए, हमने अन्याय किया। उस कृष्ण ने उसे क्या कहा, जो स्वर्ग लोक में चले जाओ, सस्वरी सर तुमने हमारी इच्छा के अनुसार में काम किया। इसमें एक रहस्य ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं,
ट्रांसलेशन
तक अच्छा पहले ट्रांसलेशन कर लो।
So we were continuing from the other day, where Sri Krishna was thinking, I have killed all, because Lord Brahma had prayed in the beginning that Krishna should appear in this world to remove the burden on the earth. So after the completion of his pastimes, Krishna was thinking, I have killed all the demons in Vrindavan. Also, so many demons such as Jarasandha and their combined armies I also finished. In Mathura, I killed demons like Kamsa, Charan, Mustik and Kalyavan. Outside Mathura, I killed other demons like Kasi Naresh and Pandra Vasudev. Sri Krishna had arranged the Mahabharat war, where except for 10 persons, both of the entire armies were completely destroyed. But Sri Krishna was thinking, there is still someone left. Who is that? My own devotees, including those brought from the heavenly planets by the inspiration of Lord Brahma, as well as the eternal residents of Vaikuntha, as well as the eternal residents of Dwarka and Golok Vrindavan. They are still remaining. So in order to remove them, Yogamaya, understanding the desire of Krishna, arranged this final pastime. Sri Krishna can do anything. What is impossible, he can make possible. Therefore, this curse of the rishis that we heard of the other morning, this was the direct inspiration of Krishna. It was done by him personally, because nothing is impossible for him. The rishis had cursed, made this iron club, born from the womb of Samba, destroy the whole dynasty of the Brishnis. Therefore Krishna said, now I see many inauspicious signs here in Dwarka. So Krishna took everyone to Prabhas Chetra. He said, if we perform yagya and please the demigods, then these inauspiciousness may be mitigated. Thus all gathered together at Prabhas Chetra. They performed yagya and gave generous charity to the Brahmins. But under the influence of intoxication, as they were drinking rice wine, they forgot their relationships with each other. Prajumna, Satyaki, Aniruddha, all the thousands of sons of Krishna all became intoxicated and began fighting. Sri Krishna and Balaram tried to stop them, but they also turned against Krishna and Balaram. Thus, in the ensuing battle, almost everyone was destroyed. Finally, Balaram himself disappeared by taking the form of a huge snake with many heads, and Balaram disappeared from this world. Then Sri Krishna went under the shade of one huge banyan tree. He was neither happy nor sad. In fact, he looked like a great saintly person. That time, Uddhava appeared there, and he prayed to Krishna, "I know that very soon your pastimes in this world will be completed, and you will go to your eternal abode. Please take me with you." Then Krishna answered, "No. I need you in this world for some time. Why? Because the religious principles and the topics of my pastimes will almost be non-existent after I disappear. Therefore, you should stay in this world and keep and establish them properly. You should go to Vidura." Krishna ordered Uddhava. "You should go to Vidura in Bhadrikashram and give all this news to Vidura. You should stay there. And also in one form you can stay in Vrindavan." Then before disappearing from this world, Krishna gave knowledge to Uddhav. That knowledge is even more specialized than the knowledge that Krishna gave in the Bhagavad Gita. That knowledge that Krishna spoke to Uddhav at the end of his pastimes is called the Uddhav Sandesh. Uddhav Sambad. That time, Daruka, in the divine child of Krishna, came down from the sky. And Krishna told him, "You can return, go back to the spiritual world." So... Daruka came from Dwarka with a chariot, and as soon as Daruka got off the chariot, then to the amazement of everyone, the chariot went into the sky and disappeared. So, Krishna then declared, "In 7 days, Dwarka will completely disappear under the ocean and nothing will remain." So, after all this occurred, Krishna was sitting under one tree with one foot resting on the top of his knee. That time, he appeared to be in meditation. So the foot that was resting on the knee was pinkish. So one hunter came, and in seeing the pinkish foot of Krishna, he mistook it to be the face of a deer, and he shot his arrow at it. When he came to capture the deer, which he presumed to be shot, he saw it wasn't a deer, it was Krishna. And that arrowhead had come from the club which Ugrasen tried to ground but could not. That piece was thrown in the ocean, eaten by a fish, and that's how it came on the arrow of the hunter. When the hunter saw that he had pierced Krishna, he fell at the feet of the Lord and begged me, "I am so sinful, please punish me." Krishna said, "No, I will send you to the heavenly planets." Therefore, all of this is most confidential and have been revealed by Sri Krishna Chakravarti Thakur. Gopimanandini.
जिस समय पहलिए ने बाण मारा उनके चरणों में, इतने में ब्रह्मा शंकर इत्यादि और सब इंद्र इत्यादि देवता लोग आकाश मार्ग में आ गए। देवता लोग कृष्ण की गति को लक्ष्य नहीं कर सके, कब किधर से कहां गए ये नहीं। और ब्रह्मा शंकर ने उनको सशरीर जैसे प्रकट लीला में थे, वैसे ही प्रकट लीला जैसे एकदम सशरीर उनको जाते हुए देखा, और उनकी स्तुति स्तव करने लगे। कृष्ण सा शरीर गए कृष्ण एक बहेलिए के बहाने के द्वारा मारे जाने पर मर जाएंगे। जो भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य के अग्नि के बाण से नहीं उनका कुछ बिगड़ा, कालिय दह ने कालिय का विष पान कर लिया, आग खा लिया दो दो बार और उनका कुछ नहीं हुआ, उनको बहेलिए के बाण से वो मर जाएंगे और चले जाएंगे। यह ठीक बात नहीं। आज भी द्वारका में स्मार्त ब्राह्मण लोग कृष्ण का क्रिया कर्म करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं कि उनका उद्धार हो जाए। ये दुर्बुद्धि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कृष्ण की लीलाओं को स्मार्त ब्राह्मण लोग समझ नहीं सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, कृष्ण विश्व ब्रह्मांड के पालन करने वाले, पोषण करने वाले, विनाश करने वाले हैं। कृष्ण कभी मरते नहीं है, सशरीर जगत में प्रकटित होते हैं, लीलाएं करते हैं और अपनी लीलाओं को छोड़ करके जो जीव के लोग कीर्तन करके भाव सागर पार करके हमारा प्रेम पाएंगे, इसलिए छोड़ करके चले जाते हैं। लोग इसी से भाव सागर पार करते हैं। उनकी कथाएं आज कृष्ण गए, आज उनकी कथा हो रही है, मानो अभी प्रकट हो रहे हैं। तो कृष्ण या भगवान के किसी अवतार का जन्म और मरण नहीं होता है, प्रकट और अप्रकट का अंतर है। एक कथा बोल रहे हैं, कह रहे हैं, एक राजा था, रानी उसके पुत्र भी थे। एक दिन अपने राजदरबार में रानी के सहित में बैठा था, बैठे थे और वहीं पर एक नट जो ग्रामों में, शहरों में, सर्वत्र खेल तमाशा दिखलाते हैं, वे राजदरबार में दो बांसों को खड़ा कर दिया, गाड़ा नहीं जमीन में खड़ा कर दिया, उसके ऊपर से एक रस्सा मोटा
बांध दिया,
लेकर के तान दिया नीचे में, इधर इधर में खूंटी गड़, और नटी थी, नट की जो पत्नी छरहरी थी, बड़ी सुंदर, लेकिन वे छरहरी मैंने मोटी टोटी नहीं, घड़े पर घड़े रखा और हाथ में बांस और खटखट खटखट करती हुई उसी से रस्सी से चढ़ गई ऊपर और चढ़ करके हाथ में लेकर के नृत्य करने लगी। घड़ा भी है, लोग देख करके आश्चर्य हो गए। रानी तो इतनी मुग्ध हो गई कि जबकि वो नृत्य करके नीचे उतरी और घड़ा खड़ा कुछ गिरा नहीं, तो नौलखा हार था निकाल करके उसको गले में देना चाहा, किंतु पास ही में नटी के दो लड़के, एक 8-9 वर्ष, एक 10 वर्ष का, दोनों किशोर, दोनों बड़े
बलवान
बलवान थे। कहे मैया मैं दूंगा और दूसरा कहे मैं दूंगा मैया, झगड़ने लगे किंतु कोई किसी से छीन नहीं सका। तो एक ने तलवार निकाली म्यान से और शख्स उसका सिर अलग कर दिया और दूसरा भी एक साथ ही दोनों सिर कट गए, गिर गया, दोनों गिर गए। नटी दौड़ी, हाय हाय हमारे बेटे मरेंगे, और उसी तलवार से अपना गला काट दिया। लेकिन मेरे पत्नी और दोनों बच्चे मेरे मर गए, नट भी आया और उसी समय तलवार से, किसी को रोकने का समय नहीं मिला, इतनी जल्दी तेजी से घटना हुई, बस घट गई। और इसके बाद में राजा रानी बड़े दुखी। आनंद के लिए मैंने आदेश दिया था उसका खेल देखने के लिए, ये तो बड़े दुख की बात। उसका शरीर तरीर वहां से फेंकवाया, रात भर उन लोगों को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे एक पत्र आया, महाराज हमने पहला खेल तो दिखलाया और उसका नौलखा हार मिल गया, किंतु दूसरी खेल हमने दिखलाई, उसका इनाम नहीं मिला। हमारे दोनों बच्चे जीवित हैं, हम भी जीवित हैं, हमारी पत्नी भी जीवित है, यदि दया करके हमारे आश्रम में आए तो देखेंगे हम लोग सब जीवित और भली भांति अच्छे हैं। राजा और रानी सुन करके, पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा कौतूहल हुआ। उस समय रथ पर चढ़े, कुछ आश्रितों को साथ में लिया, उसके घर गए, देखा जो नट और नटी मुस्कुराते हुए फूल की माला हार ले करके उनकी अगवानी करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आगे आए, गले में माला दी। ये लोग तो देख रहे हैं कल मर गए थे, आज कैसे जीवित हो गए। महाराजा हम लोग मरे नहीं थे, वो तो एक हम लोगों की खेल थी, जादू का खेल, आंख का पान। वो कोई वहां पर मरा करा नहीं, वो जादू का हमने ऐसा खेल दिखला दिया कि सब लोग समझिए मर गए। तो समस्त विश्व ब्रह्मांड को रचने वाले एक नट यदि कर सकता है, तो सारे विश्व ब्रह्मांड को ध्वंस करने वाले, रचना करने वाले, पालन पोषण करने वाले के भी जो ऊपर वाले हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है, उनके लिए यह करना कि असंभव है। मथुरा की बात है, उस समय मथुरा में रहता था, तो हमने सुना कलकत्ते के कोई बीसी राय थे,
पीसी सरकार
बड़े जादूगर थे। एक समय कलकत्ता के गवर्नर की इच्छा हुई कि हम देखेंगे, उसका बड़ा नाम सुना, उसको निमंत्रण दिया और साथ साथ में बड़े बड़े
ऑफिसर,
कलकत्ते के जो ऑफिसर थे मिलिट्री के और साधारण लोग, धनी मानी सबको बुलाया, सब लोग वहां पर गए। 4 बजे अनाउंस किया गया कि 4 बजे आप लोग आएंगे, 4 बजे
शुरू करें,
उसके जादू का खेल आरंभ हो जाएगा। सब लोग आ गए 4 बजे, किंतु वो सरकार नहीं आया, बीसी सरकार। 1 घंटा बाद ये लोग कहते जी 1 घंटा हो गया नहीं आया, अच्छा आएगा तो पनिशमेंट देंगे। तब 1 घंटा बाद पांच चिबाते चिबाते आनंद से मुस्कुराते हुए सभा कक्ष में प्रवेश किया। गवर्नर और सब पुलिस अफसर तो बड़े बिगड़े हुए थे, जिसे इसको दंड देंगे। तुमने देर क्यों किया, 4 बजे की बात थी, हम लोग 4 बजे से बैठे हैं। तो हजूर मैं 4 बजे तो ठीक है, अपनी घड़ी देखिए। सब लोगों ने घड़ी देखा, 4 बजे अब क्या करेंगे। ऐसी घटना मथुरा में देखा एक बार एक जादूगर आया, उसका लड़का भी था साथ में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इत्यादि पुलिस के एसपी सब आए थे उसकी खेल देखने के लिए। वो जादूगर क्या किया कि अपने
बेटा
लड़के को आप गला काट दिया सबके सामने, और एक बक्सा था उस बक्से में उसका सिर काट करके रख दिया, धड़ तो पड़ा हुआ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि आप ताला दे दीजिए। उन्होंने ताला दे दिया बक्से को। तब एसपी को कहा कि आप एक दूसरा ताला भी दे दीजिए। उन्होंने दे दिया, और इसके बाद में बेटे बेटे तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ,
पापा जी आ रहा हूं।
और वो मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ और लड़का आ गया, हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसलिए कृष्ण के लिए कोई असंभव चीज नहीं है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ, कृष्ण ऐसे कर सकते। इसलिए कुछ अस्मातों की ऐसी धारणा होने पर भी हम लोग शास्त्रों के अनुसार में हम विचार करेंगे तो देखेंगे शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य है। तात्पर्यों को ऊपर से नहीं दिया है, बदला दिया है जैसे हुआ, किंतु उनके टीकाकार यदि नहीं रहते उसका अर्थ निकल जाता वो ठीक रहता है, किंतु साधारण लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। गोरखपुर के गीता प्रेस वाले इसका अर्थ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग गीत भागवत को अर्थ समेत टीका समेत हम लोग छपवाने की चेष्टा करते हैं। बस वंशा कल्पतरु
Shiva, Indra, Ganesh, etc. all appeared there and offered prayers. And how and where Krishna disappeared in his original body, even they could not understand. Thus they offered prayers and also left. Shagrita says one question is there. Krishna, who could not be killed by drinking the poison of Kalia, Krishna who twice drank the forest fires, Shri Krishna who was not killed by the powerful celestial weapons of Drona and Bhishma, then could Krishna be killed by an arrow of an ordinary hunter? So even today in Dwarkapuri, the foolish ritualistic brahmanas, the smartas, even today they perform the offering of oblations to Krishna's soul called Pinda, as well as funeral arrangements for him. How they are very foolish. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains in his commentary, listen. See, Krishna who maintains, creates and destroys countless billions of universes, then how he can be destroyed? See, Krishna has no death. And even today, people who chant of the activities of Krishna cross the ocean of birth and death and achieve pure devotion for Krishna. Then even though Krishna has disappeared, the chanting of his activities continues even today. Therefore neither Krishna nor any of his incarnations has birth or death. Simply Krishna and his incarnations appear and disappear. So Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explains in this way. There was one king, his queen, and their son. One day they called one traveling entertainment troupe to their palace. Therefore, between two bamboo sticks, there was a thin rope, and upon that rope, the wife of the magician, she had one. Well, she was tightrope walking on that rope with a bamboo stick in her hand for balance. Not only that, upon her head there was many pots, 4 or 5 on her head, and she was dancing in a most astonishing way. The queen became so much impressed that after the magician's wife came down from the tightrope, she took off a diamond necklace from her own neck and gave it to that lady. That lady had 2 sons who were like 9 and 10 years old, and they were very strong. So one son grabbed the necklace. "Give it to me, mother." And the other son went to take it off him. "No, give it to me." They began fighting over the necklace, but neither could take it off the other. Then, simultaneously, they both drew their swords and cut off each other's head at the same time. The magician's wife began crying, "Both my sons are dead. Oh, alas, alas, my life is useless." She took that sword and cut her own throat. Then the magician, he saw, "My sons are dead, my wife is dead." He took the sword and also, Ram Nam Satyadev, finished himself. Thus, all became dumbstruck. The king and queen said, "Alas, we called this magician's troop for some entertainment and we have witnessed this tragedy." They were very, very upset and they could not sleep that night, and the bodies and the heads were thrown in another direction. But 1 or 2 days later, a letter came. "Oh King, you paid us for the first performance, but you did not pay us for the second performance. Therefore, please come to our ashram. You will see none of us are dead. We are all alive." Therefore, the king and queen became filled with joy. They came on their chariot to the ashram of the magician, and he saw the magician was smiling, his wife was smiling, and the 2 sons were smiling, and they welcomed the royal family with garlands. Thus, this was simply part of the magic show. Then Sri Vishwanath Chakra Thakur explains, "Even an ordinary magician can perform this type of bewildering activities, then what to speak of the Supreme Lord who creates and maintains countless billions of universes? Nothing is impossible for him." Then Gurudev tells 2 stories. There was one magician called V.C. Sarkar.
V.C.
V.C.
So he was very famous. So hearing of his fame, the governor of Bengal invited him to the ministry for a performance. So all the big personalities were invited, including police, military, political. So it said the show will begin at 4 o'clock. So everyone was there at 4 o'clock, but he wasn't there. In fact, they're waiting 1 hour later. At 5 o'clock, he came in smiling and laughing.
Chewing
betel nut. Then the governor was so much insulted. "We called him at 4 and he kept us waiting 1 hour. We must give him some punishment." And all the big personalities were shouting and angry. And he said, "4 o'clock. If you look at your watches, you'll see the time." All looked at their watches, 4 o'clock. So, there was another Gurudev said, "I saw this with my own eyes in Mathura." There was one magician who called his, and all the big personalities were called for his magic show. So in the magic show, he cut off the head of his own son and put the head in a separate box. Then the district magistrate was called, the police chief were also given 1 sword. And that everyone was bewildered. What happened?
They locked.
Oh, they locked the box. Head got 1 lock and the body got another lock. Then what happened? Next minute the son came laughing, "Oh my father," could have said, "I saw that with my own eyes." The magician called, "My son, come, oh father, I am here." And everyone was astonished. Could have said, "I saw that myself." So, even though it has been explained in the scriptures in one way, still in his commentaries, our acharyas have explained the real essence of this disappearance pastime of Sri Krishna. Therefore, the ritualistic Brahmanas are bewildered, and even today they think Krishna died, he was some ordinary person. But nothing is impossible for Sri Krishna. Therefore, there are so many commentaries, translations of the Srimad Bhagavatam. Don't want to mention anyone, but Gita Press. And they are given this wrong understanding of the disappearance pastime of Sri Krishna. So Gurudev said, to give people the correct understanding according to the commentaries of our previous acharyas, I am retranslating the Bhagavatam in the Hindi language with the commentaries. Go, Prema.